फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने खालिस काम जो है वो इस तरीके से हमारे लिए आसान कर दिए हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ ताकि शायद आपको फिर इससे मजीद मोटिवेशन दूँ। आप देखिए कि आपके पास गोल्ड का एक सेट है, 5 तोले आपके ख्याल में उसका वजन है। आप सोचते हैं कि जब भी कभी जरूरत पड़ी इसको बेचूंगी और मैं वो पैसे इस्तेमाल कर लूंगी, पाकिस्तान से पता करवा ले। मिसाल दे रही हूँ, कोई कहता है कि 50,000 का एक तोला है, आप कहते हैं कि मेरे पास 5 तोले का सेट है तो इसका अंदर कि ये जब भी बेचूंगी 2.5 लाख मिलेगा, यही गुमान होता है ना। अब जिस वक्त आपको जरूरत पड़ी और आप ज्वेलर के पास वो सेट ले गई, अब क्या होगा? सुनार को आप देते हैं और आप गुमान कर रहे हैं कि ये भी 2.5 लाख का चेक मेरे हाथ में देगा, लेकिन बाद में पता क्या चला? सबसे पहले तो उसने डोरियां काटी, फिर उसमें से उसने मोती छाड़े, फिर उसमें से उसने टांका निकाला, फिर उसने नए पुराने सोने का वजन कम किया, फिर रेट का फर्क करके जब आपके हाथ में आएगा ना तो वो 5 तोले की बजाय 2.5 आ गया, तो बड़ी बात है। हालांकि सुनारे खुद कहते हैं जब वो हमारे पास कोई चीज जाती है 3 दफा हमें एक चीज दे दो तो सोना हमारा हो चुका होता है, खोट तुम ले चुके होते हो। यानी 5 में से या तो बड़ी नसीब अच्छा होगा आपको 2.5-3 तोले भी मिल जाए, वरना वो 2.25-2 बटर खा देंगे। बस यहां समझिए, अल्लाह के हाँ हम 5 तोले का वजन करके नेकी लेके जाएंगे। 5 नमाजें पढ़ी है ना, हम 5 तोले लेके गए, वहां जाके हमारी नमाजें पहले खोट फोट निकलेगा, उसकी हालत उसकी अदा। सही हदीस है, आज नमाज का टॉपिक नहीं, वरना मैं हदीस सामने रख के कोट करके आपको सुना दूं कि कई नमाजी ऐसे हैं कि उनकी नमाज का सिर्फ आधा हिस्सा उनको मिलेगा कयामत के दिन, कुछ का 1/8 हिस्सा, किसी का चौथाई, और फरमाया कुछ तो ऐसे कि उनकी नमाज काले कपड़े में डालकर उनके मुंह पे मार दी जाती है कि रखो अपने पास। सुनार कह देगा ये खोटा, ये सोना है ही कोई नहीं। आप नकली चीज को सोना समझ के अपने लॉकर में रख दें और जिस दिन मजबूरी पे गई लेने के लिए तो क्या हुआ? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इखलास और रियाकारी यही है, नकली सोने को असली समझना या असली को नकली समझना। वही बंदा कल कयामत के दिन अपनी नेकियों का वजन पाएगा जिसके अंदर से खोट निकलेगा। आज निकाल दें, अल्लाह से कि हमें हल्के वजन की नेकी करने की तौफीक दे दे, लेकिन इखलास वाली दे दे। हमें बड़ी बड़ी नेकियां नहीं करनी कि जो बाद में और शर्मिंदगी हो। देखिए ना, अगर कोई ससुराल वाले कोई 10 तोले का सेट ले आते हैं, सारी तरह वाह वाह हो गई जी, इन्होंने बड़ा भारी सेट पहनाया, बाद में पता चला नकली था तो मुंह छुपाएंगे ना, और पता चला कि खोट था या चांदी था और सोना था। सबको ये मिसालें मेरी समझ आ रही हैं। अमली जिंदगी में तो हमें प्योर रेशम और आर्टिफिशियल रेशम का भी फर्क पता है। सिंथेटिक कपड़ा क्या होता है, प्योर क्या होता है, कॉटन का क्या है, और ब्रांड कौन सा, और कौन सी ए क्वालिटी और कौन सी बी क्वालिटी है, सबको पता है। यही अमलों में भी है, देखने में एक लगता है, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं लुक लाइक। बाज लोग कहते हैं मेड इन जापान, और हमारे मुल्क की मोहर में लगा होता है मेड एस जापान, कि हमने भी जापान जैसा बना लिया। वो अब किसी सीधे को क्या पता कि एस और इनका क्या फर्क है। तो कयामत के दिन ये सारे ब्रांड खुलेंगे। पिछले साल पाकिस्तान गई तो मुझे किसी ने बताया कि जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना, मतलब बड़े बड़े नाम है, मैं ले लूंगी तो कोई बुरा ना मनाइएगा, मैंने भी एक दो याद किए हुए हैं, तो वो जब लेने जाते हैं तो पूछते हैं आपको जी मारिया भी असली चाहिए कि नकली चाहिए, ये भी मारिया कौन है, बी कौन है, ये ब्रांड है। अच्छा जी, तो असली जोड़ा कितने का है? वो 12 से शुरू होता है, 12,000 से 15,000 से, और नकली लेना है तो 5-6 का भी मिल जाएगा। ये यकीन करें, ये काम है पूरा। मैंने कहा ये दुकान खोल के बैठे हुए हैं और ये यहाँ नकली होते हैं, कहते ये नकली होते हैं उधर असली, तो मैंने कहा इनको आके कोई पकड़ता नहीं है, कहते पकड़ना किसने, हमारी मर्जी है। एक डिजाइन बनता है वो सारे चोरी कर लेते हैं, हम भी करते हैं, हम पैसे अपने दे के कमा रहे हैं, और अब वो कहते हैं हमारा उनसे अच्छा है। आप मुझे बताइए दुनिया में समझ आती है कि नहीं, ये असल डायमंड है, ये नकली है, ये जरकोन है, ये अमेरिकन डायमंड है, ये फुलान डायमंड है, किसको नहीं समझ आती ये बातें? तो क्या अल्लाह ही इतना भोला है? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को ही नहीं पता कि मेरी ये नेकी इस वक्त जो मैं आपके सामने कर रही हूँ ये किस नीयत से, मैं क्यों बैठी हूँ इधर, आप मुझे देखें, आपके वाह वाह क्या खूबसूरत दर्स देती हैं, मजा आ गया, सुरूर आ गया, लज्जत आ गई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मैं इतनी थोड़ी तारीफों के लिए थोड़ी आती हूँ, मुझे क्या लगा ये तारीफ तो मैं वहां बैठ के भी करा लूं। अगर मेरा ये अमल आपके बजाय अल्लाह के लिए नहीं होगा ना, तो यकीन करें आप सबको मेरे दर से फायदा हो सकता है, मुझे नहीं होगा। कल क़यामत के दिन जहन्नुम में कई ऐसे लोग जल रहे होंगे कि लोग उनको देखेंगे और कहेंगे तुम्हारे वाज सुन सुन के तो हम नेकियां करने लग गए, तुम क्या हुआ? का जो तुम्हें कहते थे वो खुद नहीं करते थे। जैसे शम्मा नहीं होती, मोमबत्ती कैंडल तो जलती है, दूसरों को रोशनी दिखाती है। क़यामत के दिन कई मुबल्लिगीन ऐसे होंगे वो दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, खुद जलेंगे आग में। अल्लाह हमें उनमें से ना करे, अल्लाह ताला हमें रियाकारी से बचाए। सूरत कहफ ही के अंदर आप देखिए जो ये बात है ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी कह दीजिए कि मैं तुम ही जैसा एक बशर हूं। देखिए कौन किसको कह रहा है, अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि नबी आप लोगों को बता दे इन्नमा अना बशरुन, बेशक मैं तुम्हारी जैसा एक बशर हूं। आज बशर और नूर के ऊपर कितने झगड़े डाल दिए लोगों ने, हालांकि मुझे आपको क्या लगे आप बशर थे या नूर थे, हमें तो ये देखना है कि हमें काम क्या कह के गए हैं। लेकिन कुरान क्या है, इन्नमा अना, लोग इसको काट के कहते नहीं इन्ना अलग है माँ अलग है, नहीं हूं मैं बशर। यानी सिर्फ आपको मैं बारीकी इस हल्की सी इसलिए बता रही हूँ कि बाज दफा कुरान कोट करने वाला भी ठीक कोट नहीं कर रहा होता, इसलिए इल्म लीजिए। खुद कुरान सुन्नत का इल्म लेने से आपको पता चलता है कि दीन असल में प्योर शक्ल में क्या है, कि अल्लाह के नबी की तरफ इजाफा क्या, यूहा इलैया, मेरी तरफ वही आती है, और अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मेरा और तुम्हारा इलाह एक है। तो बस जो रब से मुलाकात की उम्मीद रखे उसको चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शामिल ना करे। सूरत निसा आयत 125 नोट करें, वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, और उससे भी खूबसूरत दीन किसका होगा। सोचिए जरा जहन में कितना खुशकिस्मत शख्स आता है जिसकी तारीफ अल्लाह फरमाए कि उससे भी ज्यादा अच्छा दीनदार कोई है। कौन, मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह वहुवा मुहसिन, के जो अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दे और वो मुहसिन भी हो। तो मुहसिन बनना इस्लाम का आला तरीन दर्जा है। अस्लम वजह बिल्कुल इब्तदा होती है, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ली, वक्त के साथ साथ जब इत्तबाए रसूल आती है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी के तरीके जिंदगी में आते जाते हैं, इसी के साथ एहसान आता है, इसी से फिर इखलास आता है। हजरत अनस बिन मालिक की एक बहुत प्यारी रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीजें, देखिए ये हदीस आप लिखेंगे क्योंकि ये वो चीज है जो मेरे आपके लिए आज लाजिम है। बस दफा दीन का काम करने वाले एक जमात दूसरी जमात, एक मसलक दूसरे मसलक, एक गिरोह दूसरे गिरोह, एक मस्जिद दूसरी मस्जिद, यानी आप इसको आप जितना मर्जी इलेबोरेट कर लें, उनको देख नहीं सुखाते ये फुलां है ये फुलां है, भाई अल्लाह के बंदो मुसलमान हो काफी नहीं है, तुमने क्यों उम्मत को तोड़ के रखना है। तो ये हदीस क्या है, तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें किसी मुसलमान का दिल खयानत नहीं करता। नंबर एक, अल्लाह के लिए इखलास अमल, यानी एक अगर बंदा खुद वाकई मोमिन है ना तो वो कोई अमल अल्लाह के सिवा दूसरे के लिए नहीं करेगा। दूसरी बात, हुक्काम और उमरा की खैर ख्वाही। आज तो हम जो लतीफे सियासतदानों के और जो मौलवियों के बनाते हैं वो अल्लाह की बना है कि नहीं, हम सोचते हैं ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लतीफे बनाएं। भाई आपको क्या हक है, नहीं वो बुरे हैं तो बुरे हैं तो आपने उनको क्यों चूज किया, आप अपने अमाल अच्छे कर लीजिए, आपके अमाल खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। बहरहाल तीसरा, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ना क्योंकि इनकी दुआएं इनके पीछे से घेरे होती है। क्या इस हदीस से पता चला कि इखलास मुसलमान के अमल की रूह है और उसकी सबसे बड़ी खूबी है, और इखलास के बगैर इंसान की सारी कोशिशें बिखरे हुए जर्रात की तरह। अल्लाह ताला हमें क्यामत के दिन की रुसवाई से बचाए। और यह हदीस जो है ये सही तिर्मिजी की रिवायत है, इसकी बहुत डिटेल है लेकिन मैंने आपको सिर्फ खुलासा बता दिया। अब सवाल पैदा होता है कि इखलास तो दिल का अमल है ना, मसा आप और मैं सब बैठे दर सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, मुझे क्या पता आपका क्या दिल है और मेरा क्या दिल है, सवाल समझे मेरा, ये तो अंदर का अमल है। और दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है, तवक्कुल होता है, इखलास होता है, उसका डर, उससे उम्मीद, उससे सब कुछ दिल के अंदर है। अजार जवारे तो ताबे हैं, तो फिर कैसे पता चले कि किसके दिल में इखलास है किसके नहीं है, सवाल समझ आया। इखलास तो दिल में होता है, अमल जाहिर में लोग देखते हैं, पता कैसे चलता है कि इखलास है कि नहीं, तो लिख लीजिए, इखलास के बगैर ज्यादा दिन तक नेकी नहीं होती। नमाजी ज्यादा दिन तक नमाजी नहीं रहेगा अगर इखलास नहीं है। आप किसी की देखा दिखाई नेकी शुरू कर देंगे, कोई नेकी का काम भी कर देंगे, दिखावा हो जाएगा, नहीं होगा। नबी सल्लम की अजवाज में से कुछ बीवियां आपके साथ एतकाफ किया करती थी, एक साल क्या हुआ कि जब आपने उनके लिए हुजरा लगवाया उधर, तो दूसरी ने कहा मैं भी करूंगी, जब दूसरी ने कहा तीसरी कहेंगी मैं भी करूंगी, सब ने खेमे लगवाए। जब अल्लाह के नबी को पता चला, आपने सब के उतरवा दिए, कहा तुम में से कोई एक भी इस दफा इतकाफ नहीं करेगी, क्योंकि वो एक दूसरे को दिखावे के लिए। आज हम क्या करते हैं, नहीं फिर सब कर रहे हैं फिर हम नहीं करेंगे तो नजर आएगा। मसलन शादी हुई किसी की खानदान में, आप सब दावत खिला रहे हैं दुल्हन को, तो आपका दिल करता आप खिला दें, नहीं दिल करता तो ना खिलाए। नहीं, फिर सबने खिलाई फिर मैं नहीं खिलाऊंगी तो बुरा लगेगा, वल्ला ही उस दावत का आपको फायदा नहीं होगा। वो दावत इबादत बन सकती थी अगर आप अत्तिमुत्ताम पे अमल करते, लेकिन अब इस बात पे कि अब देना तो पड़ता है। अब क्या ये जुमला ममूमन नहीं बोलते खानदानों में, करना तो पड़ता है, देना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा। ये सास को जो बड़े बड़े कड़े पहनाते हैं, ये कोई इखलास के साथ पहनाते हैं? ये तो बेटी को बातों से बचाने के लिए पहनाते हैं। तो ये सारी चीजें इंसान के खिलाफ वबाल बनते हैं, और ये चीजें इंसान के फिर अमल में से खूबसूरती भी निकाल देती हैं। और जब आप और मैं इस काम को अल्लाह के लिए करेंगे तो हमारी एक अदा होगी। सूरत यूसुफ में अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ के नाते से एक बड़ी खूबसूरत बात की, आयत नंबर 108 में, कुल हाजी ही सबीली, कह दीजिए ये मेरा रास्ता है, अदू इल्लाह, मैं तो अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ। इसको अपनी जिंदगी का स्लोगन बना लें, अदू इल्लाह। मेरी दावत किसी जमात की तरफ नहीं है, किसी गिरोह से नहीं तुम्हें जोड़ता, किसी मसलक से नहीं जोड़ता, किसी उस्ताद से नहीं जोड़ता, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से जोड़ता हूँ। देखिए, ये अल्लाह के नबी के जरिए से ये दुआ हमें सिखाई है। आज से ये दुआ करें, ए अल्लाह मुझसे अगर दीन का कोई काम लेना है ना तो अपने लिए लेना, मुझे किसी के लिए नहीं करना, मुझे किसी से लेना भी कुछ नहीं, कोई मुझे दे भी नहीं सकता इस काम का बदला। किसी के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि इस काम की कोई कदर कर सके। ए अल्लाह ये काम सिर्फ मेरा तेरे लिए हो जाए, तू इसको कबूल कर ले। और खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह हामीम सजदा आए 33 में तो और भी प्यारी बात की। इसको पढ़ के बहुत खुशी होती है, हर उस बंदे को यकीनन होती होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी अमल करने की कोशिश करे। और वो क्या, वमन अहसनु कौला मिम्मन दा इलल्लाह, उस शख्स से बेहतर बात और किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हो। बस लोग सारी जिंदगी दीन का काम करते हैं। अनवर कश्मीरी साहब का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े आलिम थे फिकह हनफी के। तो उनके नाते से एक वाक्या बयान किया गया, हसन इस्लाही साहब है शायद, या मैंने खुद वो बुक पढ़ी भी हुई है, पढ़ाई भी हुई है, इत्तेहाद ए मिल्लत। तो उसमें वो कहते हैं कि आलिम थे बहुत बड़े अपने दौर के, तो बीमार थे, बिस्तरे मर्ग पे थे। तो मैं उनकी इयादत को गया, तो मैंने उनसे बात कोई की तो कहने लगे कि यार जिंदगी जाया कर दी। तो कहते मैंने उनका ये जुमला सुना तो मैंने कहा कि मुफ्ती साहब, कहने लगे आप ये बात क्यों कह रहे हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी जाया की है तो फिर हमारे जैसों का क्या हाल है, आपने तो अपनी सारी जिंदगी दीन की दावत में गुजारी, लोगों को दीन सिखाया सिखवाया। तो उसके जवाब में जो बात उन्होंने लिखी वो क्या कहा, कहते उन्होंने कहा यार छोड़ो, मुझे तो आज बिस्तरे मर्ग पे ये समझ आ रहा है कि सारी जिंदगी लोगों को दीन की दावत कम दी है और फिकह हनफी से जोड़ने की कोशिशें ज्यादा की हैं। हमारी तो हर तकरीर हर स्पीच का आखिरी जुमला ये होता था, लोगों हनफी बनो। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला की फिक को सारी दूसरी फिकों पे बरतर साबित करने में कोशिश की, और आज मुझे लग रहा है कि ये काम अल्लाह के लिए नहीं किया, मैंने तो अपने मसलक की तरवीज के लिए किया। अब आप बताइए वो कितने बड़े आलिम थे, और अल्लाह ने उनसे ये बात अगर कहलवाई और आज उन्हीं की सोच रखने वाले एक दूसरे आलिम ने अपनी किताब में लिखी हुई है, तो कितनी बड़ी बात है कि आज यहां दुनिया में हम अपने आप को चेक करें। वल्ला ही ये मसलक, ये जमात, ये गिरोह मेरा आपका कुछ नहीं लेगा, ये आपको मुझे जन्नत नहीं देगा। आप आला दर्जे के फिकह हनफी के मानने वाले भी हो लेकिन इखलास नहीं है ना, तो क्यामत के दिन शर्मसारी का सबब होगा। आप अपने आप कह लें हदीस कह लें, आप कुरान और सुन्नत वाले कह लें, आप अपना कोई सैयद के साथ नाम जोड़ लें, हाशमी खानदान जोड़ लें, अगर आपके मेरे अंदर इखलास नहीं है तो बात नहीं बनेगी। अब आखिर में चंद बातें आपको दूंगी, फायदे क्या हैं, फिर इंशाल्लाह पैदा कैसे करना है, क्योंकि कुछ चीज़ों के फवायद मिल जाते हैं ना तो लेनी आसान होती है ना, किसी भी मशीन के। और ये जितना भी आजकल एडवर्टाइजिंग में चल रहा है पहले चीज़ों की तारीफें करते हैं ना, तो मैं चंद तारीफें देकर आखिर में इंशाल्लाह फिर आपको बताऊंगी कि इखलास हासिल कैसे करना है। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे दे। अच्छी नीयत का मुकाम और इसके समरात क्या है, यानी नीयत अच्छी होगी, क्योंकि आप देखिए कि नबी सल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो नीयत अमल की बुनियाद है कह लीजिए, अगर बुनियाद मजबूत होगी तो इंशाल्लाह ताला अमल भी बड़ा खूबसूरत होगा। और हर हदीस की किताब के शुरू में अमूमन एक हदीस आती है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमल कुल्लि इमरिम मा नवा, हर आदमी की नीयत वही होगी जिसके लिए उसने नीयत की थी। और अल्लाह सुबहाना ताला कुरान पाक में एक और मुकाम पे फरमाते हैं, सूरत निसा आयत 114 114, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. इनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई खैर नहीं होती। हाँ, भलाई के मशवरों में जो सदके का या नेक बात का और लोगों में सुलह कराने का हुक्म दे, और जो शख्स सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये काम करेगा तो हम उसको बहुत बड़ा अजर और सवाब देंगे। तो इन सारी बातों को सामने रखते हुए आइए कुछ समरात, कुछ फल देखते हैं अच्छी नीयत के जो के हमारे सामने होंगे। और वो क्या है कि जब हम आम दिनों में इखलास के साथ काम करते हैं ना, तो कभी किसी मजबूरी की वजह से हम वो काम नहीं कर सकते। वाकई सच है, मौसम एक जैसे नहीं रहते, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बहार, कभी इसी तरह इंसान की सेहत एक जैसी नहीं रहती। हम हमेशा एक ही फॉर्म में नहीं होते कि हम भाग भाग के काम करें। तो जब आप काम नहीं कर रहे होते, अल्लाह सुबहाना ताला के पास फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि आज भी ये काम कर रहा है, इसका ये काम लिख दो। हदीस सुनाती हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी बात की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजा मरीद अल अब्दु औ साफरा कुतिब लहू मिस्लु मा कान यअमलु मुकीमन सहीहन। जब बंदा बीमार हो जाए या हालत सफर में हो, तो भी हालत इकामत और सेहतमंदी के अमल की तरह इसका अमल लिखा जाता है। समझ आइए बात। एक रिवायत आती है इसके बारे में कि एक दफा मस्जिद में कुछ लोग इबादत कर रहे थे, तो बाहर से एक दो लोग आए तो किसी को ढूंढने लगे। लोगों ने पूछा, आप किसको ढूंढ रहे हैं? कहा, फुलां को। लोगों ने कहा, वो तो आज नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह ने हमें कहा है कि वो आज इधर है। कैसे कहा है? असल में वो फरिश्ते थे। अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों से कहा कि जाओ लिखो, मेरा कोई बंदा, मसलन असलम नाम का एक शख्स है, और असलम नाम के इस शख्स के नाम के साथ लिख के आओ कि इस वक्त वो मस्जिद में बैठा इबादत कर रहा है। जब मस्जिद में आकर उन फरिश्तों ने चेक करना चाहा तो वो वहां नहीं था। तो लोगों ने कहा कि रोज आता है लेकिन आज नहीं आया। कहा, अल्लाह ने तो हमें कहा है कि वो आज वहां है। कहा, इसलिए कि चूंकि रोज यह काम करता था ना, तो आज नहीं कर सका, अल्लाह ने आज भी उसका अमल लिख दिया। मसलन आपके आज के दर्स में हो सकता है कोई ऐसी सिस्टर है जो आना चाहती लेकिन वो बीमार है, नहीं आ सकी, तो आप फिक्र नहीं कीजिए, वो घर बैठे आपके इस अजर में शामिल है। लेकिन ये इखलास के बगैर ये नहीं होता। दिखावे के लिए, मुमारी के लिए आना और इखलास के लिए आना फर्क है। मस आप देखिए कि कोई घर है और उसका दिल तड़प रहा है, मैं क्यों नहीं गई, मैं क्यों नहीं गई, हाय मैं आज ही क्यों बीमार हो गई। और कोई के शुक्र है आज ही तो बीमार होने का फायदा हुआ है। कई लोग हैं रमजान में बीमार हो तो उनको गम पड़ जाता है, हाय हम क्यों बीमार हुए, रोजा छुटेगा। कुछ कहते हैं यही तो सबसे खूबसूरत दिन है बीमार होने के, क्योंकि रोजा छूट जाएगा। तो इंसान को आमाल का अजर मिलता है। इसी तरह आपने फरमाया, जिस शख्स का भी रात में उठकर नमाज पढ़ने का मामूल होता है, पहले तो अपने लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा मामूल बना दे कि हम रातों को चाहे दो नफिल पढ़ सके लेकिन हम जरूर उठे। कभी इस पर नींद गालिब आ जाती है तो उसके लिए उस नमाज का सवाब लिख दिया जाता है और उसकी नमाज उसके लिए सदका करार पाती है। समझ आई? रात को सोच के सोए कि आज तहज्जुद पढ़ूंगी, सो गए, कोई नहीं उठे, फजर के वक्त ही उठे। सिर्फ आपकी उस नीयत और इरादे पे अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे, जाओ इनका तहज्जुद का अजर भी लिख दो और ये जो सोए का ये सदका दे दिया, मैंने इसको गिफ्ट दे दिया। कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी खूबी हो तो फिर इंसान कैसे पीछे हो। फिर एक और बड़ी खूबसूरत रिवायत है, ये पहली रिवायत बुखारी की थी, दूसरी अबू दाऊद की थी। एक और रिवायत सुनिए जिससे आपको इंशाल्लाह और भी खुशी होगी। आपने फरमाया, जो शख्स खूब अच्छी तरह से वुजू करता है और फिर मस्जिद जाता है और देखता है कि लोग नमाज से फारिग हो चुके हैं, तो अल्लाह ताला इसे मस्जिद में हाजिर होकर नमाज अदा करने वालों के बराबर सवाब अता फरमाता है। इससे इसके अजर में कोई कमी नहीं आती। कभी आपके बेटे लेट हो जाए ना, आपके बेटा चले जाओ, तुम्हें घर से निकलकर मस्जिद में जाने में पूरी नमाज का अजर मिल रहा है, तो क्या अल्लाह ताला के साथ सौदा कोई बुरा है? फिर इसी तरह आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से सच्ची नीयत के साथ शहादत मांगता है, अल्लाह उसे शहीदों के मरातिब तक पहुंचा देता है, ख्वाह इसकी मौत इसके बिस्तर पर ही आए। ये सही मुस्लिम की रिवायत थी। आप सोचिए, शहादत का शौक किस किस को है? अगर सच्चा शौक है ना इखलास के साथ, घर में बिस्तर पे भी मरेंगे, अल्लाह ताला आपको शहादत की मौत देगा इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला की एक रहमत है। ये चीज अल्लाह ताला अपने बंदों पर फजल और एहसान को साबित करती है कि अल्लाह अपने बंदों पर फजल करते हैं। आपको कहते हैं कि गजवे तबूक एक बहुत मुश्किल हालात में की हुई जंग थी, कि जिसमें लोगों को खड़ी फसलें भी छोड़नी पड़ी। आज सुबह के दर्स में भी थोड़ी सी बात हुई थी उसके बारे में। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम मदीना में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ आए हो कि तुम जिस रास्ते से भी गुजरते हो और जो कुछ भी खर्च करते हो और जो भी वादी तुम तय करते हो वो इसमें तुम्हारे साथ होते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल जब वो मदीना में हैं तो हमारे साथ कैसे हो सकते हैं? सोचिए ना, सवाल कितना क्लियर है। सहाबा का अकीदा बड़ा क्लियर था, हमारी तरह खुद ही नहीं सोच लेते, नहीं वो उधर है तो उनकी रूहें इधर आई हुई हैं और वो उधर भी हाजिर हैं इधर भी हाजिर हैं, नहीं सीधी सी बात है कि वो उधर हैं तो इधर क्यों नहीं है। तो फरमाया कि अल्लाह के नबी वो कैसे, तो आपने फरमाया इसलिए कि उनको उजर ने रोक लिया, यानी कोई रीजन थी उनके रुकने की और अल्लाह ने उनकी नेक नियति की वजह से उनको अजर में तुम्हारे साथ किया। किसी शख्स का नाम याद है आपको कि गए नहीं थे, अजर उनका शामिल है? उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु। तबूक में नहीं गए, बीवी बीमार है, बदर में नहीं गए, बीवी बीमार है, और सुलह हुदैबिया में उधर पकड़े गए हैं और अल्लाह के नबी अपना हाथ और दूसरा हाथ रख के कहते हैं ये उस्मान का हाथ है। यानी जिनको सच्चे उजर रोक ले आप उनके लिए बदगुमान ना हुआ करें। अच्छा हम क्या कहते हैं, उसको तो आना ही नहीं था, उनकी तो नीयत ही नहीं, वो तो खुश होकर आती नहीं है, बहाना कर लिया होगा, शाम को शादी में जाना होगा। भाई आप क्यों तबसरा निगार बने रहते हैं हर वक्त? जो आता है खुशी से मिला करें। आज मिसाल आप में से कोई बैठ जाए, अच्छा तस्नीम बाजी वो फलां क्यों नहीं आया, वो नहीं आई, भाई आप छोड़ दीजिए, आप शुक्र करें कि आप तो आए हुए ना। तो ये खाम खा के जो तबसरे हैं ये बाज दफा इंसान के अमल को जाया कर देते हैं। और नेक नियति से जब कोई काम करे ना तो मामूली अजर भी बढ़ जाता है उससे उस बंदे का। एक शख्स नबी सल्लम के पास आया, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं किताल करूं या इस्लाम लाऊं, यानी अभी मुसलमान नहीं हुआ लेकिन शौक कितना अल्लाह के रास्ते में जाने का, क्या करूं पहले? आपने कहा पहले इस्लाम लाओ फिर जिहाद करना। इसने इस्लाम कबूल किया, फिर अल्लाह की राह में लड़ता रहा यहां तक कि शहीद हो गया। कोई नेकी नहीं की, बस मुसलमान हुआ जाके शहीद हो गया। अल्लाह के नबी ने उसके बारे में फरमाया कि आमिला कलीलन, इसने अमल तो थोड़ा किया, वह उजीरा कसीरन, और इसको अजर बहुत ज्यादा दिया गया। इसी तरह एक शख्स नबी सल्लम के पास आया और आप उसको कलमा पढ़ाने के बाद इस्लाम के अहकाम सिखा रहे थे कि ये कुछ करना है। वो अपने ऊंट पर रवाना हुआ तो उसका ऊंट, वो एक नेवला होता है ना जानवर, उसके सुराख में गया और ऊंट गिर गया, और जब वो गिरा तो ये शख्स नीचे उससे गिरा दिया गया और उसकी मौत वाकई हो गई। तो नबी सल्लम ने फरमाया कि अमीला कलीलन व उजीरा कसीरन, तो बाज दफा थोड़े थोड़े अमल करके भी इंसान बहुत आला अजर अता करता है। फिर एक और बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है इखलास का, कि बंदे के इखलास की वजह से बरकत आ जाती है। अल्लाह ताला थोड़ी चीज में ज्यादा बरकत देता है। हदीस है, आपने फरमाया जब बंदा अपने अहलो याल पर खर्च की नीयत से खर्च करता है, यानी हसूले सवाब की नीयत से खर्च करता है, तो वो चीज उसके लिए सदका बन जाती है। यानी आपके हस्बैंड अगर घर में ग्रोसरी लेकर आते हैं, अच्छी नीयत से लाते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बीवी खाएंगे, तो वो उनके लिए सदका होगा और अजर मिलेगा। ये बुखारी की रिवायत है। फिर इसी तरह बुखारी की एक और रिवायत में आपने फरमाया, तुम अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए जो कुछ भी खर्च करोगे तुम्हें उस पर अजर मिलेगा, हत्ता कि जो लुकमा तुम अपनी बीवी के मुंह में डालोगे इसमें भी तुम्हें अजर मिलेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, करते तो हम सारे ही हैं। आप खाना बनाती हैं ना, ये नियत क्या करें कि अल्लाह मैंने भूखों को खिलाना है। शौहर भी तो भूखे ही होते हैं ना, बच्चे भी भूखे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो काली चिड़ियों को खिलाएं और छत पे डालें और काला बकरा जिबा करें फिर सदका होगा। हर नेकी सदका, कुल्लु मारूफिन सदकतुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और रिवायत नोट कर लीजिए, बहुत खूबसूरत रिवायत है, तवील है इंशाल्लाह, इब्ने माजा की रिवायत है। फरमाया दुनिया चार किस्म के लोगों के लिए है। अब आप 1, 2, 3, 4 लिख लें और आगे एक एक करके लिखते जाइएगा। कौन से चार लोग? एक वो बंदा जिसे अल्लाह ने माल और इल्म से नवाजा, इसमें वो अपने अल्लाह से डरता है और सिला रहमी करता है और इसमें अल्लाह के लिए हक जानता है, ऐसा शख्स अफजल मर्तबे पर फायज है। क्या खुलासा हुआ? माल भी दिया अल्लाह ने, इल्म भी दिया। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में करे, माल अल्लाह के रस्तों में दो दो हाथ से लौटाएं और इल्म दिया है तो इल्म को लोगों के साथ शेयर करें, का ये बेहतरीन शख्स है। दूसरा वो बंदा जिसे अल्लाह ने इल्म से नवाजा है और माल से महरूम रखा है, लेकिन वो नेक नियत है, कहता है अगर मेरे पास माल होता तो मैं फलां की तरह अमल करता, तो उसकी नियत का एतबार होगा, दोनों का अजर यकसा है। समझ आई? माल थोड़ा, किसी को देखा 1,000 यूरो सदके में दे रहा है, कहता है अल्लाह अगर मेरे पास भी 1,000 होता ना तो मैं भी देता, ये 100 है ये दे दूं। फरमाया वो 100 दे रहा है लेकिन उसका अजर 1,000 का होगा, ये दूसरा शख्स है। फिर फरमाया तीसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल अता किया लेकिन इल्म से महरूम रखा, यानी समझ कोई नहीं कि माल को इस्तेमाल कहां करूं, وہ بغیر علم کے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی ناحق جگہوں پہ استعمال کرتا ہے، بچے کی شادی پہ 10 لاکھ لگا دیتا ہے مثلاً۔ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے، ہائے کبھی میرے پاس بھی مال ہوتا نا، میں بھی اپنے بچوں کے ارمان پورے کرتا۔ فرمایا، جتنا گناہ اس کو خرچ کر کے ہوا نا، یہ خواہش کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ نعوذ باللہ، آج آپ کو ایسے کردار زیادہ نہیں دکھتے؟ آہیں بھرتے ہیں، ہائے ہم اپنے بچوں کی خوشیاں کیسے کریں اور یہ وہ کریں۔ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی۔ اور آخری یعنی چوتھا آدمی وہ ہے، وہ بندہ جسے اللہ نے مال دولت اور علم تو نہیں دیے، نہ مال ہے نہ علم ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ کہتا ہے، مال ہوتا تو میں بھی ذرا دنیا میں ذرا اپنا روب دکھاتا، میں بھی خوب خرچ کرتا۔ اور اس کی نیت کا اعتبار ہوگا تو اس کا گناہ وہ پہلے شخص کی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، پھر وضاحت فرمائی، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے عملاً انجام نہ دے سکا تو اللہ تعالیٰ اسے پوری نیکی عطا کرتا ہے، یعنی نیکی کا اجر صرف نیت پہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو فائدہ دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اخلاص کا ایک اور فائدہ نوٹ کر لیں، اخلاص کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ملتی ہیں، یہ نہیں کہ صرف ایک خاص بھلائی ملتی ہے بلکہ ساری بھلائیوں کو انسان سنبھال لیتا ہے۔ دوسری بات، اخلاص اعمال کی قبولیت کا سبب ہے، اسی پہ تو اس وقت سے بات کر رہے ہیں کہ اخلاص کے بغیر قبولیت نہیں ہوگی اعمال کی۔ پھر تیسرا فائدہ جس کا ذکر میں نے پیچھے اشارتاً کیا تھا، اخلاص کے نتیجے میں بندے کو اللہ کی اور فرشتوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور پھر زمین والوں کے دل میں اس کی مقبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ بڑی پیاری روایت آپ نے کئی جگہ سنی ہوگی۔ پھر اسی طرح اخلاص تھوڑے عمل اور معمولی دعا پر اجر بے بہا عطا کرواتا ہے۔ مخلص کا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کا لکھا جاتا ہے، چاہے وہ عمل مباح ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ عام عمل بھی کرتا ہے تو اس کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ پھر مخلص کو صرف نیت پر اجر دیا جاتا ہے، چاہے وہ کام کر بھی نہ سکے، سو جائے بھول جائے پھر بھی اجر ملتا ہے، مخلص بیمار ہو جائے صحت کے دنوں میں کیے ہوئے کاموں کا اجر اس کو ملتا ہے، اور اخلاص کے سبب اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کے عذاب سے بندہ بچتا ہے، اور درجات بھی قیامت کے دن بلند ہو جائیں گے اخلاص کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑی بات نوٹ کریں، مخلص کو اللہ کبھی گمراہیوں میں نہیں بھٹکنے دیتا۔ کئی لوگ ہیں جو پہلے غلط چیزوں پہ تھے پھر حق پہ آگے، وہ سناتے ہیں کہتے ایک تڑپ تھی، اللہ نے ہمیں اٹھا لیا، اور نیک نامی ملتی ہے اخلاص کے ساتھ، دل کا اطمینان ملتا ہے، انسان اپنے آپ کو بہت مطمئن محسوس کرتا ہے۔ پھر اخلاص کے ساتھ ایمان کی خوبصورتی نظر آتی ہے، زینا قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ دل کو خوبصورت کرتا ہے۔ مخلص شخص کو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت عطا کرتے ہیں۔ ان سب کے دلائل ہے لیکن میں صرف آپ کو ہنٹ کی طور پہ دے رہی ہوں تاکہ آگے نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات، مخلص کا حسن خاتمہ ہوتا ہے، اس کی موت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، وہ دوسروں کی نصیحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے بغیر دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی، اور اخلاص والے کی قبر بہت کشادہ کر دی جائے گی، اس کی قبر کے اندر نعمتیں اور شادمانیاں ہوتی ہیں اور جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ ہمیں یہ سارے فوائد دے۔ چند منٹ میں سب سے اہم حصہ آج کی گفتگو کا شیئر کرتی ہوں کہ اخلاص لائیں کیسے، اہم بہت ہے۔ اگر آپ نے پیچھے کچھ بھی نہیں سنا نا، یہ چند جملے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدے کے ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص کے لیے دعا کریں۔ سیدھی سی بات ہے، جو چیز آپ کو مجھے اپنی کوشش سے نہیں مل سکتی نا، وہ دعاؤں سے مانگیں۔ اردو میں مانگا کریں، اللہ اخلاص دے دے، اللہ اخلاص دے دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، قرآن کی کچھ دعائیں بھی ایسی ہیں کہ جس میں اشارے ہیں، سیدھا سیدھا کہیں کہ اللہ مجھے خالص کر دے، اللہ میرے اندر کا کھوٹ کپٹ دور کر دے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا طریقہ اخلاص حاصل کرنے کا، اللہ کی عظمت کو محسوس کریں۔ دیکھیے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں، پھر بات کو آگے بڑھاؤں تو فائدہ ہوگا۔ ہم نے جیسے بندے کو کوئی چیز پیش کرنی ہوتی ہے نا، اس کے مطابق خریدتے ہیں۔ عام سا شخص ہے تو عام سی چیز کہتے ہیں، سو کے وہ خوش ہو جائے گا۔ خاص بندہ ہو، کوئی بہت اعلیٰ کپڑے پہنتا ہے، اعلیٰ چیزیں کھاتا ہے، اعلیٰ برتنوں میں کھاتا ہے، تو ہماری تسلی نہیں ہوتی، اینڈ تک کہتے ہیں نہیں، بہت بڑے لوگوں نے آج ہمارے گھر میں آنا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ کی عظمت کو دل میں محسوس کریں گے نا، تو نماز پڑھتے ہوئے ضرور سوچیں گے، یہ نماز پیش کس کو کر رہی ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ آگے آپ کو بات واضح ہو جائے گی اللہ کی بڑائی کو۔ اور اللہ کی بڑائی کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے اسماء اور صفات پہ غور و فکر سے، تو اللہ کے بارے میں جاننے سے اخلاص آتا ہے۔ تیسری چیز بہت اہم، ہر وقت اپنی موت کو یاد کریں۔ वल्लाह ही देखिए इस वक्त 4:53 हुए हैं, अभी हमारे पास 8 मिनट हैं हमारे दर्स के। अगर पूरे 5 बजे तक हम में से कोई ना जी सके, ख़त्म हो जाए, 5 बजे मेरी मौत आ जाए ना, तो मेरी क़यामत शुरू हो गई। अब मैं एक ज़र्रा बराबर नेकी अपने अमाल में नहीं कर सकती, इल्ला ये कि ज़िंदगी में कोई कर रही थी तो उसको अल्लाह बढ़ा दे, या किसी की दुआ लग जाए, या मेरी औलाद मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे अमल ख़त्म। तो मुझे अपनी मौत को अगर याद रखना है तो क्या उससे मेरी नेकियां नहीं बढ़ेंगी? आप खुद सोच सकते हैं कि अपनी मौत को याद करना ये बहुत ज्यादा इखलास लाता है। मैं क्यों लोगों के लिए करूं, लोगों ने मुझे क्या देना है? फिर चौथी चीज नोट करें, लोगों की बातों से बेनियाज हो जाए, लोगों को उनके मुकाम पर रखें। वल्लाह ही हमने लोगों को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाया होता है छोटी छोटी बातों में। कभी आप लोगों को शादियों के लेन देन या खाने और बरातों के इस्तकबाल करते वक्त देखा करें, ऐसे लगता है इनके घर में आज कोई फरिश्तों की जमात ने आना है। कोई चीज ही नहीं अच्छी लग रही होती, हॉल सजा भी लिया, आराम से बैठ जाए, नहीं कमी ना रह जाए। दूल्हे की माँ, दूल्हा की अब्बा, फलां कहते हैं कि नहीं, दूल्हा के कहे या दुल्हन के कहे, बात तो एक ही है ना। तो जिस बंदे की हमारे दिल में वैल्यू होती है ना, हम उसके लिए कोशिश करते हैं। तो लोगों को जरा सा नीचे करें। आज हमने अल्लाह को भी बड़ा किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमने लोगों को भी बड़ा किया हुआ है। और फिर उसके बाद चौथा एक तरीका इखलास लाने का, खुद को मैदान हशर में खड़ा महसूस करें। नेकियां बदियां तुल रही हैं, और वही बात है, फमे या मल मिसकाल जर्रतिन खैरिन जरा और शर्रिन जरा, आयत याद है आपको, और अभी खोट खपट की मिसाल भी दी है ना। ये बात जहन में रखें कि मेरी इबादत जब असल में क्यामत के दिन जाके तुलेंगी ना, तो वहां इनका कितना को वजन निकलेगा। अल्लाह कहते हैं हम एक हवा मम्बस्सा, हवा मंसूरा के भी लफ्ज आते हैं सूरह फुरकान में, कि हम काफिरों के अमाल को एक बिखरी हुई हवा बना देंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें इखलास अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।